आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन पत्रों की वापसी की आज अंतिम तिथि। दूसरे चरण में प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर होगा चुनाव। सोशल मीडिया पर ईवीएम गायब होने के दावे को निर्वाचन आयोग ने बताया गलत, कहा एक भी ईवीएम गायब नहीं। आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों के साथ मालवाहक विमान की भी सफल लैंडिंग का हुआ अभ्यास। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल से, अयोध्या में भव्यता से मनेगा रामनवमी का उत्सव। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की वापसी के लिए आज अंतिम तिथि है। नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वालों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। इसके पहले दूसरे चरण में दाखिल नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए 175 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किए गए थे। नामांकन पत्रों की जांच में 94 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 81 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हुए हैं। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होगा, उनमें पीलीभीत सीट का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट।
पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें 4 विधानसभाएं पीलीभीत जनपद की पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और पीलीभीत शामिल हैं। वहीं एक विधानसभा बरेली जनपद की बहेड़ी भी इसमें शामिल है। भाजपा द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मौजूदा कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को टिकट देने से पीलीभीत सीट महत्वपूर्ण हो गई है। जितिन प्रसाद ऐसे नेता हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार, 3 बार के सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रहे कुंवर जितेंद्र प्रसाद उर्फ बाबा साहब के सुपुत्र हैं और पीलीभीत जिले में उनकी कोठी का खासा राजनीतिक प्रभाव है। सपा और बसपा प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणी बना रहे हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट से एक मृतक यह भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ गैर जनपद के व्यक्ति ही सांसद चुने जाते रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में उतरे 10 प्रत्याशियों में से 5 गैर जनपद से ताल्लुक रखते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए ओम अवस्थी।
भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे उस संदेश को गलत बताया है जिसमें 15 लाख ईवीएम गायब होने का दावा किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये दावा भ्रामक है। ये भी बताया गया कि एक भी ईवीएम गायब नहीं हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईवीएम अनियमितता वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि विश्वसनीय सूचना के लिए उसकी आधिकारिक वेबसाइट को देखा जा सकता है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रवर्तन एजेंसियों और उड़न दस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी जैसे अवैध सामानों की जब्ती के संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 6 अप्रैल तक 128 करोड़ 42 लाख रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं और नकदी जब्त की जा चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहल और अभियानों की शुरुआत की है। आयोग मतदाताओं तक संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जेनजेड सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में पहली बार वोटर बन रहे युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत जिन संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होना है, वहां निर्वाचन आयोग की तरफ से दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा के तहत घर से वोट डलवाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में चुनाव आयोग के निर्देश पर कल लगातार दूसरे दिन दिव्यांगों और बुजुर्गों के घर घर जाकर वोट डलवाए गए। इस लोकसभा क्षेत्र में पहले दिन 236 और दूसरे दिन 77 लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को घर से वोट डालने की छूट दी है जो चलने में अक्षम हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मेरठ में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास नहीं है। स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल को वोट देने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कल बुलंदशहर के खुर्जा और गाजियाबाद के साहिबाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बसपा अपने कार्यकर्ताओं के तन मन और धन से चुनाव लड़ती है। आकाश आनंद ने कहा कि प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी तब शिक्षा और नौकरी सब कुछ मिलता था। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर कल लड़ाकू विमानों के साथ मालवाहक विमान की भी सफल लैंडिंग का अभ्यास हुआ। सबसे पहले दो सुखोई विमानों ने हवाई पट्टी पर लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद इन विमानों ने डमी मिसाइल लोड करने के बाद उड़ान भरी। बाद में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग हुई। चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल से होने जा रही है। इसे लेकर प्रदेश भर में दुर्गा मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंदिरों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नवरात्र के दौरान मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्यवासिनी धाम तथा बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। चैत्र नवरात्र का समापन रामनवमी के साथ होता है। रामनवमी के अवसर पर इस बार अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राकट्य का उत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसे लेकर कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अयोध्या के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक स्थानों पर LED के माध्यम से श्री राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके साथ ही 15 से 18 अप्रैल के बीच श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ाया गया है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पड़ रही रामनवमी के अवसर पर 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रामनवमी मनाएं। इस बीच चैत्र रामनवमी मेले को लेकर 14 अप्रैल से अयोध्या में हाईवे पर अस्थायी बस स्टैंड शुरू हो जाएगा। परिवहन निगम के ARM आदित्य प्रकाश ने बताया कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम 120 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। महान विद्वान और श्री काशी विश्वनाथ के अनन्य साधक स्वामी शिव शंकर चैतन्य भारती का कल वाराणसी में निधन हो गया। वे 108 वर्ष के थे। कल रात विश्वनाथ धाम के सामने गंगा नदी में उनको जल समाधि दी गई। स्वामी शिवशंकर चैतन्य भारती के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी जी का निधन संत समाज और आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन पत्रों की वापसी की आज अंतिम तिथि। दूसरे चरण में प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर होगा चुनाव। सोशल मीडिया पर EVM गायब होने के दावे को निर्वाचन आयोग ने बताया गलत, कहा एक भी EVM गायब नहीं। आगरा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों के साथ मालवाहक विमान की भी सफल लैंडिंग का हुआ अभ्यास। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल से, अयोध्या में भव्यता से मनेगा रामनवमी का उत्सव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।